वला यज़ालुल्लज़ीन कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु। ईमान वालों को तो यकीन होता है ये हक है, ये सच है, और रह गए मुनकर, किसी भी दर्जे के मुनकर, काफिर, न शुक्रे न कदरे, उनका हाल क्या है? वो तो हमेशा शक में मुब्तला रहेंगे। इस बारे में, किस बारे में? ये नबी के बारे में, इस किताब के बारे में, कुरान के बारे में। उनका दिल नहीं खुलना इस किताब के बारे में, यहाँ तक कि हत्ता तातियहुमु साअतु बग्ततन औ यातियहुम अज़ाबुन हत्ता यातियहुम अज़ाबु यौमिन अकीम। यहाँ तक कि आ जाए इन पर क़यामत अचानक, या आ जाए इन पर अज़ाब मनहूस दिन का। ये वो दिन होगा जिस दिन इनके शक दूर होंगे, जब अल्लाह को अपनी आंखों से देख लेंगे। यहाँ पे वो एक किस्म की बात पूरी हुई है जिसको हमने शुरू किया था आयत नंबर 52 में, एक एंगल से, कि शैतान नबी की तमन्ना में आरजू डालता है, आज भी डालता है। अब तमन्ना के लफ्ज़ को दूसरे मानों में देखिए, वापस पलटिए आयत 52 पे, जहाँ तर्जमे में आपको बताया कि तमन्ना का दूसरा मानी होता है तिलावत करना। बाज़ लोगों ने करा के मानों में भी तमन्नी ली है, यानी किरत में, ओमनिया किरत के मानों में भी आता है अरबी में, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। अब इसके बारे में एक वाक्या है, हम सूरत नजम में तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ उसका एक इजमाली सा बयान है। और वो क्या कि एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, सूरत नजम के अंदर कुछ आयात ऐसी आईं कि जिसके बाद शैतान ने कुफार के जहनों में कुछ ऐसी बातें डाल दीं कि अल्लाह के नबी ने उनके बुतों की तारीफ़ की है। वाक्य आता है कि हरम में आप कुरान पढ़ रहे थे, कुफार भी वहाँ मौजूद थे, अल्लाह के नबी ने सूरत नजम की तिलावत शुरू की, और उसके अंदर इतना सौती हुसन है कि जो इर्द गिर्द लोग थे उनको बिल्कुल होश ही नहीं रही कि आप क्या कह रहे हैं, मगन हो गए साथ ही। उसमें एक आयत आती है, अफ़रईतुमुल्लातवल्उज़्ज़तवल्मनातस्सालिसतुल्उख़रा, कि क्या तुमने देखा है लात को और उज्जा को, ये उनकी देवियाँ थीं, और मनात जो तीसरी थी। शैतान ने उसके बाद नबी सल्लम की ज़ुबान से नहीं, लेकिन कुफ्फार को ये बात लगी। इसकी सनद पे हम वहाँ जाके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बात है। शैतान ने कुफ्फार के कानों में ये जुमला डलवा दिया कि अल्लाह के नबी ने ये लात मनात और उज्जा के ज़िक्र के बाद कह दिया, तिलकल गरानीकुल उला वइन शफ़ातुहुन्न लतुर्तजा, कि ये तीनों बड़ी बुलंद देवियां हैं और इनकी सिफारिश या इनकी शिफात की उम्मीद की जाती है। जो कुफार अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये सुन रहे थे ना, जब उन्होंने ये जुमला सुना, ओ मुबारक मुबारक, नबी ने भी हमारी बुतों को जायज़ करार दे दिया, इन्होंने भी हमारी इन देवियों की तारीफ़ कर दी, इतने खुश हुए। इसके बाद आगे आए थे सजदा, नबी सल्लम जब सजदे में गए, ये सारे भी सजदे में चले गए। अब इमेजिन करें, मुसलमान क्या सोच रहे हैं कि कुफार मुसलमान हो गए, इतना इनके दिल में कुरान ने असर किया, खुशी हुई, खबर फैल गई कि मक्का वाले सारे मुसलमान हो गए। इधर से खबर क्या फैली, वो हबशा में पहुंच गई कि सारे कुफार मुसलमान हो गए। अब वो बेचारे जो घर छोड़ के गए हुए थे, खुशी खुशी वापस आए कि मसला ही ख़त्म हो गया, जब दुश्मन दोस्त बन गया, अब क्या लड़ना है, अब क्या मसला है। वापस आए, पता चला वो कहानी गलत थी, फिर पलटे और बहुत तकलीफ़ें और जुल्म सहे। मुसलमानों को लगा कुफार मुसलमान हो गए हैं इसलिए सजदा किया, और कुफार ने क्या समझा कि नऊज़ बिल्ला अल्लाह के नबी ने अपने नज़रियात में तरमीम कर ली है और हमारे ऐसे खुदाओं को वेरीफाई कर दिए। ये थी वो बात जिसके बारे में आयत में आता है। बस कहते हैं कि फिर इस पर यह आयत उतरी थी कि जब कभी नबी तिलावत करता है कुरान में से, तो उसकी उस तिलावत के अंदर शैतान क्या है, इज़ा तमन्ना अल्क़ा शैतान फ़ी उम्नियती, शैतान नबी की तिलावत के बीच में दखल अंदाजी करता है। तो बात वही है, खुलासा दोनों का वही है कि जब भी हम भी कुरान पढ़ते हैं ना, तो ज़रा केयरफुली पढ़ा करें। बस दफ़ा आपको पता है कि इतनी छोटी सी गलती करवाता है हमें तजवीद की शैतान कि जिससे मानी बिल्कुल बदल जाता है। मसलन कुल या अय्युहल काफिरून, ला आबुदु मा ताबुदून में से ला निकलवा देगा, आबुदु मा ताबुदून, कह दीजिए क्या काफिरों, मैं उन्हीं की इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो। आपने जल्दी में क्या छोड़ा, ला छोड़ा। सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम को शैतान करा देगा, सिरात अल्लज़ीन अनअमतु अलैहिम, तो यहाँ कुरान के पढ़ने के अंदर एक हमें केयरफुल रहना है, दूसरा कुरान की तफसीर। इस पे तो पहले मैं अपने लिए अल्लाह से पनाह मांगती हूँ कि जब मैं कुरान पढ़ा रही हूँ आपको, कहीं शैतान मेरे इस कुरान पढ़ाने के बीच में कोई ऐसी उटकल, कोई ऐसी उशकल ना दे दे कि मैं उसका मफहूम ही बदल दूँ। ऐसे ही चलो दिल के पपोले, चलो किसी को क्या लगे, चलो मेरा मसलक सच्चा हो जाए, चलो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो जाए। तो ये हर दौर में हुआ, आज भी लोगों ने इसी कुरान से ऐसी ऐसी शिरकियाँ और बिदिया बातों को जायज़ करार दिया। ये असल में शैतान की दखलंदाजियाँ होती हैं। दोनों बातों में इंसान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसी बातों को सामने लाता है, लेकिन ये जो वाक्या ना, ये सनद से सही साबित नहीं है। इसके ऊपर इंशाल्लाह सूरह नजम में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ बस बात को समझ लीजिए कि शैतान कुरान पढ़ते हुए भी आपके साथ होता है। मत सोचें कि वो घर रहता है, आप तो टिकट खरीद के बैठते होंगे, वो फ्री बैठ जाता होगा बस और ट्रेन में। आप कहते हैं गाड़ी में जगह ही नहीं किसी और बंदे की, हालांकि जितने बंदे होते हैं उतने शैतान भी साथ बैठ के आते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ तक हम तफसीर कर चुके, इन आयात का खुलासा क्या है कि कभी अपने आप को नाकाबिले तस्खीर मत सोचिए। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप जिस दिन बड़ी सी, वो कहते हैं ना, बड़क मार के जाएंगे, उसी दिन घर में लड़ाई हो जाएगी। बस अब तो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं, आप मुझे कोई नहीं रोकेगा कुरान पढ़ने से। ऐसा फितना उठेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, यकीन करें। डरते डरते, कांपते कांपते आया करें, और यहाँ से जाके बस अल्लाह से मदद मांगते मांगते हिकमत के साथ घर वालों को ये पैगाम दिया करें। किसी वक्त आप जोश में आके कोई अच्छी बात करते हैं कि बस आज तो ये बात सुन के घर वालों ने गले में फूलों के हार डालने हैं, आपको पता चलता है वो आपके पाँव की बेड़ी बना देते हैं। बहुत केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल, जिसको आप कह सकते हैं कि ये आयात हमें ये पैगाम देती हैं कि बंदे को दीन की तरफ आने के बाद जब दीन से उसका ताल्लुक जुड़ जाता है ना, तो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाए। जो चीज़ जितनी कीमती होती है ना, वो जल्दी टूटती है। आप ये सोच लें कि आप इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती तालीम ले रहे हैं, हर लिहाज से, पैगाम और अफादियत के एतबार से इस वक्त आप दुनिया की सबसे हाई ग्रेड की एजुकेशन ले रहे हैं। मानते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना, आला तालीम के लिए बच्चों को बाहर भेजा, आप बाहर बैठ के बाकी आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसकी हिफाजत कीजिए। जी अफशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है इनका। ये कहती हैं कि जब हम कुरान की तिलावत करने से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कहते हैं, तो क्या फिर भी वो डालता है? तो ये असल में आपने वो बात कह दी जो इस वक्त बिल्कुल कहनी चाहिए थी मुझे भी, और वो क्या कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कहकर हम एक बंद बांध लेते हैं कि शैतान दखल अंदाजी ना करें। आज आपको वजह भी समझ आ गई कि क्यों कुरान पढ़ने से पहले पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, क्योंकि शैतान आ गया। जैसे ही कि जैसे कोई कहे कि नोट गिनने से पहले ज़रा दरवाज़ा लॉक कर लो, इस वक्त आप कुरान खोलते हैं ना तो आपके अकाउंट यूं तेज़ी से चलते हैं। कभी आपने मीटर चलता देखा हो, कहीं भी कोई चलता हो तो आप कहते हैं ना, बड़ी तेज़ मीटर चल रहा है। जब बंदा खुद बैठ के कोई भी नेकी का काम करता है ना, तो मीटर उस वक्त भी चलता है, लेकिन जब इल्म का दामन थाम लेता है ना बंदा, तो उसका नेकियों का मीटर बहुत तेज़ी से चलता है। लेकिन याद रखें, गिरता भी बहुत तेज़ी से। कल परसों किसी से बात हो रही थी, तो बड़ी अच्छी बात, यानी दुनिया की बात थी, लेकिन उसमें से बात मुझे बड़ी अच्छी मिली। साथी थी तो कहने लगी, मैं जॉब पे गई तो मैंने अपनी कुलीग से कहा कि वीकेंड तो बड़ी जल्दी गुजर गया, यानी कि पता ही नहीं चलता, और ख़ास तौर पर जो लोग जॉब करते हैं उनका तो आपको पता है कि वीकेंड बहुत बिजी होता है। तो कहती, मैंने उन्हें जब ये कहा तो वो नॉर्वेजियन नॉन मुस्लिम थी, उसने कहा डोंट वरी, आ भी जल्दी जाएगा, यानी बाकी भी दिन जल्दी गुजरेंगे। मैंने कहा, उसने बात बड़ी सच कही है, यानी वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। आज फ्राइडे है तो कल फिर फ्राइडे लगता आता हुआ, तो बिल्कुल ज़िंदगी का सफ़र इतनी तेज़ी से गुजरता हुआ होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह सुब्हान तआला बस हमें डराते हैं कि डर जाओ, अज़ाबु यौमिन अकीम। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, बाकी सारी आयतों का अल्हम्दुलिल्लाह खुलासा हो गया। क़्यामत के दिन को यौम अकीम क्यों कहा गया? अकीम का लफ्ज़ उकम से है, ऐन काफ मीम, बांझ को भी कहते हैं ना औरत को, इसका लफ्ज़ी मानना होता है खामोश रहना। वो औरत जो बच्चा पैदा ना कर सके, या वो मर्द जो बच्चा पैदा करवाने के काबिल ना, उसको अकीम कहते हैं। अब क़्यामत का दिन यौमे अकीम क्यों कहा? इसकी वजह समझ लें कि हर दिन अपने बाद एक नए दिन को जन्म देता है ना। आप कह सकते हैं कि हर हफ्ता इतवार को जन्म देता है, हर इतवार पीर को जन्म देती है, पीर जुमेरात को जन्म देती है, लेकिन कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि उसके बाद कोई दिन और ना होगा, इसकी कोई औलाद नहीं। कयामत का दिन आखिरी दिन होगा। और दूसरी वजह क्या यौमे अकीम कहने की, कि काफिरों के लिए उस दिन कोई रहमत नहीं होगी, खैर से खाली होगी। वो हवा जो अजाब के तौर पर आती है उसको अर-रीहुल अकीम कहा जाता है। सूरह ज़ारियात आयत 41 में हम पढ़ेंगे, इज़ अरसलना अलैहिम अर-रीहल अकीम, जब हमने इन पर भांच हवा भेजी जिसमें कोई खैर की बात नहीं थी। तो आप सोच लें कि उस यौमे अकीम से पहले काम करना है, उसके बाद तो कोई खैर नहीं। जिस तरह आज दुनिया में नेकियां करने के मौके मिले हुए, तो वो फिर इसके बाद क़यामत के हमें नहीं मिलने। होगा क्या उस दिन, अल मुल्क यौम इज़िल्लिल्लाह, हुक्मरानी उस रोज़ सिर्फ अल्लाह की होगी। यहकुमु बैनहुम, वही फैसले करेगा उस दिन, सब फैसले उस दिन उसके चलेंगे, कोई दूसरा कुछ भी तो नहीं कर सकेगा। सोचिए, बल्कि इमेजिन करें इस चीज़ को, क्या फैसला है उसका। फल्लज़ीना मनु वामिलु सालिहाति फी जन्नाति नईम, के पास जो लोग ईमान ला कर अमल सालेह करते रहें वो नेमतों वाले बागात में होंगे। ये है उस दिन के फैसलों में से पहला फैसला, कोई शक है किसी को इस पे। दूसरा फैसला उस दिन क्या है, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना फ़ौलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, बस वो लोग जो कुफर करें और हमारी आयतों को जिन्होंने झुठलाया, तो ये वो बदनसीब है जिनके लिए रुस्वा को नसाब होगा। दो फैसले लिख लिए, तीसरा फैसला भी सुन लीजिए अपने प्यारे रब का। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में हिजरतें की, छोड़ दिया उन्होंने मनपसंद चीज़ों को, मनपसंद जगहों को अल्लाह के रास्ते में, फिर क्या हुआ, सुम्मा कुतिलू, फिर मारे गए, कत्ल किए गए, इशारा है जिहाद में, औ मातू, या तबई तौर पर मर गए। वक्त आ गया, बीमार हो गए, उम्र पूरी हो गई, क्या होगा, ला यरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, तो यकीनन अल्लाह ताला उनको रिस्क अता करेगा, बेहतरीन रिस्क। क्यों, इसलिए कि वइन्नल्लाह लहुवल खैरुर राज़िक़ीन, बेशक अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है, वो बेहतरीन रज़ाक़ है, वो अर रज़ाक़ है। ये अल्लाह का फैसला है क़यामत के दिन के बारे में। और क्या करेगा इन तीसरी किस्म के लोगों को, लयुदख़िलन्नहुम मुदख़लन यरदौनहु, और वो ज़रूर दाखिल कर देगा इनको ऐसी जगह में जिसे वो पसंद करेंगे। गौर कीजिएगा, आमनु वामिलु सालेहात की बात हुई तो कहा मैं दाखिल करूँगा, ये हैं पहले दर्जे के लोग नेकियों के एतबार से, आप कह सकते हैं फ़राइज़ की सतह पे जीने वाले। ईमान सच्चा था, शिर्क नहीं थी, बिदत नहीं था, और अमल भी अच्छे थे, नमाज रोज़ा किया, बीवी थी, शौहर को खुश किया, बच्चों को पाला, इज़्ज़त की हिफाजत की, कहा नो प्रॉब्लम, हम नेमतों वाली जन्नत देंगे, अच्छा तुम्हें एक पॉश सा घर दे देंगे, बहुत उसमें कंफर्ट के सामान होंगे। इसके बरक्स जो कुफर और तकजीब करें, यानी दोनों लेवल्स हैं इसमें, हम पीछे इस पर बात कर चुके, उनके लिए तो अज़ाब मुहीन है, रुस्वा को नजाब, दुनिया बनाते रहे और आखिरत बिगड़ गई। लेकिन असल यहाँ जो क़यामत के दिन का तीसरा गिरोह है ना, तीन गिरोहों का तذکرہ पढ़ेंगे सूरत फातिर में भी जाके इंशाल्लाह, और सूरत वाकिया में भी, अस्साबिकूनल अव्वलून, आगे बढ़ने वाले, एक है साबुल यमीन, एक है साबुल शिमाल, और एक है साबिकूनल अव्वलून। यहाँ इस तीसरे गिरोह की बात है, ये कौन होते हैं, हिजरत करने वाले। तीन मीम जमा कर लें आप, इंशाल्लाह ताला गलती नहीं खाएंगे। अपना अपार्टमेंट कह लें या अपना विला बुक करवाते हुए, मोमिन, मुजाहिद और मुहाजिर, ये तीन मीम मिलते हैं ना तो जन्नत के आला दर्जे में जगह मिल जाती है। ये वो शर्त है जन्नत के आला घरों में जगह लेने की, कि जब तक ईमान लाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी मुजाहिदाना ज़िंदगी ना हो, अल्लाह के रास्ते में मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल, पहले अपनी ज़ात पे दीन लगाने में मेहनत, फिर घर वालों पे मेहनत, फिर खानदान वालों पे मेहनत, और करते करते इतनी मेहनत करने के बाद फिर बिर आखिर तुम अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने में मेहनत करो। जब तक मोमिन मुजाहिद के दर्जे से बढ़कर मुहाजिर के दर्जे पे नहीं आता ना, तो जन्नत के आला दर्जों में नहीं पहुंचेगा। ये है वो जन्नतें जिसके बारे में किसी आंख ने देखा नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं, करो तो सही, कोशिश तो करो, छोड़ो तो सही मेरे रास्ते में कुछ, फिर देखो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा। पाक लोग हैं ये ख़ास लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं। ये दुनिया में भी चुने हुए थे, चाहे लोग इनकी तरफ उंगलियाँ ही उठाते थे, लेकिन इन्होंने वक्त के रिवाज से समझौता नहीं किया। ये सिर्फ फ़राइज़ में नहीं जिए, ये अजीमत के रास्ते पे जिए, जो अपनी फ़िक्र में ही नहीं रहे, दूसरों की फ़िक्र में भी रहे, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ इंसानियत के बच्चों की भी फ़िक्र की। ऐसे लोगों को अल्लाह क्या देगा? लयर्ज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। क्या होगा रिज़्क? खाना पीना? कौन सा रिज़्क है ये? ये तो वो रिस्क है जिसको जाके वहाँ बंदा देखेगा। हर चीज़ रिस्क में आती है, हत्ता कि अल्लाह के चेहरे का दीदार, अल्लाह की रज़ा, जन्नत में जाने के बाद बीमार ना होना, बूढ़ा ना होना, जन्नत में जाने के बाद वहाँ से निकाले ना जाना। और साथ ही कह दिया, ये क्यों मिलेगा? क्योंकि अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला। क्या मतलब इनकी कोशिशों से मिला? नहीं, इनकी कोशिश थी, लेकिन वो तो इनकी कोशिश थी ना। इनको अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत दे रहा है अपने ख़जानों से। दुनिया में इन्होंने भी नहीं नाप नाप के नेकियां की। ये भी नहीं कहते थे, अल्लाह बताओ वेयर कैन आई स्टॉप, बता दे बस अब और क्या करूँ तेरे लिए। नहीं, ये तो रोज़ पूछते थे, बता अल्लाह तेरी रज़ा क्या है। ये उस मुकाम पे जिए कि हर नेकी को करके कुएं में डाल देते थे और आगे चल पड़ते थे। कहते थे बस आगे देखो, मुझे किसी की बात ज़्यादा आ जाती है। हमारी ऑनलाइन की बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स और साथी भी हैं, तो कहती थी जब कोई ये काम हो जाता है ना, तो मैं उसके बाद उसको पलट के देखती भी नहीं हूँ, अगला पकड़ लेती हूँ। इससे एक तो फ़ायदा है कि काम चलते रहते हैं, और दूसरा तकबर ही नहीं आता, क्योंकि कर तो लिए हैं लेकिन अभी जो नहीं किए वो काम इससे ज़्यादा है। ऐसे ही लोग फिर अल्लाह ताला की जन्नतों में पहुँचेंगे, किस हाल में? कि इनके सामने मेन्यू कार्ड पेश किए जाएंगे। कौन सी जगह? लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनहा। चलिए लफ्ज़ मुदखलन को देख लें, ये क्या है? वहाँ भी आप पढ़ चुके सूरत बनी इसराइल के आखिर में, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन वाखरिजनी मुखरज सिदकिन यरदौना हो, जिसे वो पसंद करेंगे। देखिए, एक वो चीज़ है जो आप किसी को अपनी पसंद से देते हैं, वो भी अच्छी होती है, जिससे आप मोहब्बत करें, उसको आप कोशिश करके अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं। लेकिन एक वो चीज़ है कि आप कहते हैं कि आप बताएं मैं आपको क्या दूँ, कौन सा अच्छा दर्जा है? ज़ाहिर है कि आपने तो अपने हिसाब से बेहतरीन चीज़ दी, लेकिन हो सकता है अगले की ज़रूरत ही ना हो, उसको पसंद ना हो या उसको ज़रूरत ना हो। जब कोई कहता है अच्छा फिर आपने कुछ देना ही है ना, तो मुझे ये दे दें, आपने ले के देना है तो ये ले दें, वो कितना प्यारा होगा। और मैं इस चीज़ को वाकई महसूस करती हूँ, सभी इंसान है, लेकिन मैं जब इस दफ़ा गई तो सिर्फ एक दफ़ा मैं बाज़ार गई, और मैं किस सोच के साथ गई कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत सालों के बाद अपनी पसंद से एक सब कपड़ा खरीदूं, फिर उसको सिलवा के इस सोच से पहनूं कि ये मैंने खुद खरीदा। बहुत कपड़े हैं और शायद इसमें से कोई मैंने बनाया हो, और अच्छे से अच्छे ही होते हैं, बग़ैर कोशिश के बग़ैर एफर्ट के मिलते हैं, कोई किसी की मोहब्बत कोई किसी की मोहब्बत। लेकिन इसके बावजूद मैंने फ़ील किया कि जब मैं पैकिंग कर रही थी तो जो सूट एक दो मैंने खुद खरीदे वो मैंने सबसे नीचे रखे सूट केस में। भला क्यों? कि अगर ओवरवेट हुआ तो ऊपर से वो निकले जो मुझे दूसरों ने दिए। ये एक बहुत पर्सनल बात थी लेकिन सच थी, इसलिए मैंने आपको बताई। जो चीज़ आपको अपनी पसंद से मिलती है और जिन चीज़ों में आप अपनी एफर्ट्स डालते हैं उससे प्यार बड़ा होता है। कहते हैं ये घर तो मैंने खुद बनवाया, ये कपड़ा तो मैंने नहीं देना, ये मैंने बड़ी मेहनत से सिलाया था, इसके तो पैसे मैंने खुद जोड़े थे, ये चीज़ मैं नहीं दूंगी। इसीलिए औरतें जहेज़ की चीज़ नहीं देती, बाकी शौहर गरीब की सारी चीज़ें दे देंगी किसी को। कहते ये अम्मा के जहेज़ का सोफ़ा था, ये मैं नहीं दूंगी आपको, ये मेरे जहेज़ में आ गया। अल्लाह कहते हैं तुम अपनी पसंद की लेके तो देखो। ये चॉइस किसको मिली? जिसने दुनिया में अपनी चॉइस नहीं पूछी, अल्लाह की मर्ज़ी पूछी। ये वही बात है जिसको अल्लामा इकबाल ने शेर में भी कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तू बता तेरी क्या रजा है। बाकियों को तो वो दूंगा जो मैं चाहता हूँ, तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। और अल्लाह को खुद ही पता है कि बंदे को क्या पसंद है, इसलिए कि वह इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिल्म वाला है। उसको पता है कि बंदा नेक अमल कर कर के आया है, और हलीम इसलिए कि इस बंदे से अगर ज़िंदगी में बशरी तकाजे से कुछ गुनाह हो भी गए तो मैं माफ़ कर दूंगा। याद रखिए कि असल बात जो हमें करनी है ना, अल्लाह को अपनी सच्चाइयाँ साबित कर दें। एक दफ़ा आप अपना ये मुकाम बना लें अल्लाह की निगाहों में कि अल्लाह मैं तेरी हूँ, इन्नी लिल्लाह, अल्लाह मैं तेरी हूँ। एक दफ़ा आप दुनिया में अपना आप अल्लाह के नाम के साथ जोड़ के बना लें, बड़ी बड़ी आपकी गलतियां अल्लाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह ताला, मेरा ईमान है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसकी ये भी कमी, इसमें ये कोताही, अल्लाह कहेंगे ठीक है मेरा बंदा, ये अपना बंदा है, इसको क्यों मैं छोड़ूं, इसको मैं जलील करूं। सारी ज़िंदगी ये लोगों को अल्लाह के नाम की दुहाइयाँ देता रहा, ये सारी ज़िंदगी लोगों को मेरी तरफ बुलाता रहा, आज मैं इसको आग में डाल दूँ, तुमने मुझे ऐसा समझा। असल बात क्या है कि बंदा रब का बंदा बन जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना मौत के वक्त पे कोई छोटी बात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी के इन्नी लिल्लाह का जवाब होता है कि अल्लाह ये जो गया ये तेरा ही था, तो इसको कबूल कर ले। और अगर अल्लाह के बनने की बजाय नफ्स के बने रहे, ख़ानदान के बने रहे, मसलकों के बने रहे, जमातों और गिरोहों के बने रहे, तो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह कहेगा ये फलां गिरोह का था, ये फलां जमात का था, ये फलां का था, ये मेरा नहीं था, ये ख़ानदान का बड़ा था, ये रस्मों रिवाज का भी था, ये ज़मीनों और मरलों का था, ये मेरा नहीं बना। एक दफ़ा अल्लाह के बन के देखिए, आपको अपना आप इतना कीमती लगेगा आप सोच नहीं सकते। कहते हैं कि जब औरत माँ बनती है तो वो अपने आप को बड़ा कीमती समझती है, कहती है कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी देना क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पालना है। हमारी लड़कियों के मुँह से कई दफ़ा सुना है कोई बात नहीं मर जाएंगे, हमें किसने याद करना है, कौन रोएगा, ये है वो है। आप एक बच्चे की माँ बन के अपने आप को कीमती समझें, आप एक बीवी बन के अपने आप को कीमती समझें कि आप मेरे ऊपर एक घर चल रहा है, तो जो अल्लाह का बन के जीता है वल्लाही उसको सिर्फ़ एक ही गम होता है कि अल्लाह मुझे मोहलत दे कि मैं तेरी बन के दूसरों को तेरी बना सकूँ। सिर्फ एक लिए आप नियत करके ज़िंदगी मांगेंगे, सिर्फ एक ही सोच है जिसके लिए आप दुनिया मांगेंगे कि अल्लाह अगर तू दुनिया दे तो इसलिए दे कि उस दुनिया को भी तेरे ही रास्ते में लगाऊँ। फिर वो चलता फिरता अल्लाह वाला बन जाता है कि जिसको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। हदीस में आता है अल्लाह का इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें रियाकार कहें, मुराई रियाकार बड़ी शो मारता है। ऐसा बंदा अल्लाह का बंदा बन जाए, हर वक्त अल्लाह के नाम की दुहाइयाँ, खा रहे तो अल्लाह की बातें, सो रहे तो अल्लाह की बातें, सफ़र में तो अल्लाह की बातें, कोई अच्छी चीज़ देख रहे तो अल्लाह अल्लाह, ऐसे लगता है कि जो बंदा हर लम्हे अल्लाह का बनता है फिर वाकई अल्लाह उसको कल राज़ी कर देगा। लयुदख़िलन्नहुम मुदख़लन यरदौनहा। तिलावत सुने यहाँ तक और अपना मुहासबा करते हैं साथ साथ।
إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
چند آیات پہلے یہ آیت ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ میں دیکھا تھا اب یہاں سے اسی کی تھوڑی سی مزید وضاحت کی گئی کہ مظلوم کی مدد اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے یاد رکھیے گا کہ مظلوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ شخص مظلوم ہوتا ہے جس نے دشمن سے ظلم کا کوئی انتقام نہیں لیا کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا چھوڑ دیا ایک دوسرا مظلوم بھی ہوتا ہے اور وہ جس نے اپنے دشمن سے برابر بدلہ لے لیا انتقام بھی لے لیا اب یہ مظلوم اور ظالم برابر ہو گئے سلسلہ ختم ہو جاتا لیکن سلسلہ ختم نہیں ہوا آگے جا کر دشمن نے اس انتقام لینے کے بعد دوبارہ اس پر ظلم کیا اب پھر یہ مظلوم ہو گیا ٹھیک ہے اس آیت میں اس دوسرے شخص کا تذکرہ ہے کہ جس نے ایک بار اپنے ظلم کا بدلہ لے لیا برابری ہو گئی پھر ظالم نے پھر کوئی تکلیف دے دی ہوتی ہے نا جن کو عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی وہ پھر کر دیتے ہیں مارنے کی عادت ہوتی ہے پھر مار دیا تانا دینے کی عادت ہے تانا دے دی تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ذالکا یہ بات یعنی ان باتوں کو یاد رکھو کیا کہ وَمَنْ عَاقَبَ یا عَاقَبَ کیا ہے سوچئے گا بعد میں ابھی ادھر ہی رہے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ جس نے بدلہ لیا اتنا ہی جتنی کہ اس کو سزا دی گئی یعنی کسی نے ظلم کیا اس نے بدلہ لے لیا عُوقِبَ کا لفظ عقوبت کے نام سے اردو میں ہم جانتے ہیں عقوبت اس سزا اور بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو یعنی جو جس کے ساتھ برا کام کرے اتنا بدلہ اس کے ساتھ دے دیا غلط کام کیا اس کا بدلہ برا ہوا ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں کہ برے کام کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے اسی کو عقوبت کہتے ہیں ٹارچر اور جس طرح ٹارچر دینے کی بات ہے برابر ہو گیا معاملہ لیکن پھر کیا ہوا ثم بغی یا علی پھر زیادتی کی گئی اس پہ علی ہی کون ہے ادھر مظلوم ایک دفعہ ظالم سے مظلوم بدلہ لے چکا تھا لیکن دوبارہ اس کے اوپر زیادتی کر دی اب کیا وہ کرے لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا یعنی پھر صبر کرو بار بار اگر تم بدلہ نہیں لے سکتے تو صبر کر لو اس لیے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ہم پڑھ چکے جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اسی طرح ایک جگہ آتا ہے وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اگر تم درگزر کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے چونکہ سورۃ حج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکی دور کا آخر تھا مکہ میں مظالم کی انتہا ہو چکی تھی حد ہو چکی تھی خاموش رہو کوئی بات نہیں اللہ ان سے بدلے لے گا اور صرف ایک سال نہیں گزرا کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پہ بڑے بڑے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا کیونکہ اللہ کی ذات مدد کرتی ہے بندے کی. اور کیسے آپ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بدلہ نہ لوں, اللہ لے, اللہ کیسے لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں ہمارے لیسن کے آخر تک اپنی کچھ قدرتوں کا اظہار فرماتے ہیں, کیا میں تمہارے بدلے نہیں لے سکتا؟ تم بہت بڑے ہو جو اپنے بدلے لے لو گے, تمہیں پتہ میں کیا کچھ کرتا ہوں؟ فرمایا ذالک بان اللہ یولج اللیل والنہار. یہ بات, یعنی کون سی بات؟ کہ تم ظالموں سے بدلے نہ لو, اللہ خود لے لے گا. تم کتنا کو لوگے اور تمہارے اندر کچھ بھی تو نہیں ہے طاقت, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی بدلے لے گا, کیونکہ وہ کون سی ذات ہے جو رات کو دن کے کچھ حصے میں داخل کرتا ہے, اور ویولی جو نہار فی اللیل, اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ لام جیم اس کا روٹ ہے. ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ میں داخل ہونا. تو رات سے دن کے اور دن سے رات کے نکلنے کا منظر بھی کچھ اسی قسم کا ہمیں دکھتا ہے. فرمایا ون اللہ سمیع بصیر. تم کہتے ہو مجھ پہ کسی نے ظلم کیا, کسی نے دیکھا ہی نہیں. کوئی بات نہیں, وہ سمیع دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. تم کہتے ہو فلاں نے مجھے اتنا دکھایا, میرا دل دکھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں شوہر کو نہ بتاؤں؟ کب وہ غریب کیا کرے گا اور ہی اپنی جنت کو خراب کرے گا. تمہارے رب نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا. تو جس کو اللہ کے السمیع اور البصیر ہونے کا یقین ہوگا, وہ اپنے بدلے خود نہیں لے گا. ڈال دیجیے اپنے سارے معاملے اپنے رب کے ہاتھ پہ. پھر مزید قدرت ذالکا, یہ سارے جو ذالکا آ رہے ہیں نا, یہ وہ پیچھے بدلہ لینے پہ جا رہے ہیں. اس لیے کتنا پیارا انداز ہے, اگر آپ دیکھیں تو کتنا نیچرل وے ہے نا. جیسے آپ کسی کو اپنی کوئی کارکردگی کا یقین دلاتے ہیں, ہاں میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ یہ اس لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذالک بان اللہ هو الحق, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو برحق ہے, تو وہ تمہارا حق نہیں دلائے گا. تم پہ کوئی ظلم کر کے جائے گا کہاں؟ یہ میرا بندہ ہے, تم نے اس پہ ظلم کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے اللہ کے کسی ولی کو ستایا, اس نے اللہ کو جنگ کی دعوت دی. جن کے حق دنیا والے مارتے ہیں نا, اللہ پھر ان کے بدلے لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ الحق اس کی ذات ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, اور جن کو وہ پوچھتے ہیں اس کے سوا وہ سراسر باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بلند اور بڑا ہے. اتنی پیاری ذات تمہارے پیچھے ہے, تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم صرف اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں کھپا کے تو دیکھو, پھر دیکھو کہ لوگ تمہیں کس طریقے سے ستاتے ہیں. وہ ستائیں گے, منہ کی کھائیں گے, اس لیے کہ تمہارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. کہتے ہیں نا بندہ مومن کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ اگر ہمیں اتارنا پڑے تو کیا ہوگا؟ کتنی موٹریں درکار ہیں پانی کو نیچے لانے میں. ٹینکی میں پانی ہوتا ہے, ٹوٹیوں میں نہیں ہوتا, تو آپ کے برتن نہیں دھلتے. بجلی گئی بھی اس لیے پانی نہیں آ رہا. کون بادلوں میں سے نیچے لاتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں صرف نیچے سے پانی اوپر جانے میں, آسمان میں, بادلوں میں جمع ہونے میں اتنا ٹرانسپورٹ کا خرچہ آ جائے کہ بل اتنا بڑا آ جائے کہ لوگ منع ہی کر دیں بادلوں کو. ہاں, اللہ کی ذات پہلے نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہے, اوپر سے نیچے لاتی ہے. کہا کیا جو آسمان سے پانی کو اتار سکتا ہے, کیا وہ مظلوم کی مدد کے لیے فرشتوں کو نہیں اتار سکتا؟ اتنی قدرت ہے اس کی, پھر بھی تم اس پہ یقین نہیں کرتے. اور سچی بات یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا یقین نہیں ہے, ورنہ کبھی ہم اپنے بدلے لینے کے لیے دانت پیسیں؟ ہم کہیں کہ میں تو یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی, کچھ نہیں. حسبی اللہ, اللہ کافی ہے. افوض امری الی اللہ, میں نے اپنے کام اللہ کو سپرد کر دیے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میرے سارے شکوے شکایتیں اللہ کے آگے ہیں. اللہم اشکو رحمتک, اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. دعائے مستضعفین, کیسے اللہ کے نبی بلبل آ رہے تھے کہ اللہ میں اپنے غم کا شکوہ تیرے سامنے کرتا ہوں, مجھے پتہ تو کرے گا. اسی دعا کے اندر آتا ہے کہ اللہ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے. الی عدوٍ ملکتہ امری, کیا تو نے میرے دشمن کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ جو میرے پر ظلم کرے گا, جو مجھے چھوڑے گا, میرے پہ تکلیف لائے گا, کیا تو مجھے اس کے حوالے کرتا ہے؟ پچھلی ساری آیتوں کے ساتھ لیں تو واقعی ایک بندے کی اللہ کے ساتھ خود کلامی ہے. لیکن یہ وہی کرے گا جو اپنا سب کچھ اپنے رب کو دینے کو تیار ہوگا. فرمایا کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے, فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً, اور ہو جاتی ہے پھر زمین اس پانی کے ساتھ سرسبز و شاداب. फीका पानी, सफेद पानी जमीन पे गिरता है और जमीन से सरसब्ज पत्ते उगते हैं। जरा सोचें कि अगर हमें इन पत्तों को खुद ही रंगना पड़े, जमीन से निकल तो आए लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हो, ट्रांसपेरेंट हो और कहा जाए कि पकड़ लो रंग और ले आओ। हम करते ही ना अव्वल तो, और कर लेते तो पहली बारिश में सारा रंग उतर जाता, डब पड़ जाते। अल्लाह कैसे प्यारे रंग डालता है कि तुम सोच नहीं सकते। इशारा क्या है? इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह बड़ा लुत्फ़ फरमाने आला खबीर है। यहाँ अल्लाह ताला का नाम लतीफ़ क्यों आया है? लफ्ज़ लतीफ़ अल्लाह ताला के नाम के लिए आता है, आप डिटेल सुनना चाहें तो वेबसाइट से सुन सकते हैं। दो मानों में आता है, एक तो लुत्फ़ है ना, नरमी, लिताफत, उर्दू में कहते हैं, लतीफ़ा भी उसी से ही आता है, सॉफ्ट, यानी अल्लाह ताला इज़ सो सॉफ्ट एक मानों में। और दूसरा लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन, कीन ऑब्जर्वर, डीप लुकिंग। तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह कितने बारीक रास्तों से अपने काम कर लेता है। तुम कहते हो कि कैसे अल्लाह इसे बदला लेगा मेरा, का गम ना करो, इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। अल्लाह ऐसे दुश्मनों से बदले दिलाएगा, ऐसे जालिमों के हाथ पकड़ेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। आप कहते हैं नहीं, वो जालिम बहुत बड़ा है, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। का क्यों? लहू माफ़ समावाती व माफ़ अर्ज़, सब कुछ आसमानों और ज़मीन का जिसका है, जिसने ज़मीन और आसमान के हाथ पकड़े हुए हैं, क्या तुम्हारे दुश्मनों के हाथ नहीं पकड़ सकता? वो जालिमों के हाथ नहीं पकड़ सकता? तो पकड़ सकता है, हमारा ईमान है कि वो पकड़ सकता है। वइन्नल्लाह लहुवल गनीयुल हमीद, और बेशक अल्लाह ताला गनी भी है, बेपरवाह भी है। और तारीफ किया गया है, वो तारीफें किया वाज मालिक, वो तुम्हारे कामों को करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि बात पूरी हुई कि तुम अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी इस तरह मदद करेगा कि जिसको तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बेहतरीन तरीके से अल्लाह का बंदा बनना सिखा दे और हम अपने मामलात उसी के सुपुर्द कर दें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।